मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 27 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं पूनम कुमारी वाजपेयी मुंबई महाराष्ट्र से, नंदनी बहल हदियाबाद फगवाड़ा पंजाब से, प्रियंका चित्तौरा जालौन उत्तर प्रदेश से, उर्वशी लमधारिया रुड़की हरिद्वार उत्तर प्रदेश से, गुरुदयाल यादव वाराणसी उत्तर प्रदेश से और सविता शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो पूनम, नंदनी, प्रियंका, उर्वशी, गुरुदयाल और सविता, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बीच के 2 दिन आपके बहुत उपयोगी रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उपयोगी शब्द का उपयोग मैं पहली बार कर रहा हूं, अदरवाइज मैं अक्सर जिस शब्द का प्रयोग करता हूं जो मुझे ध्यान में आ रहा है वह सुखद रहे होंगे। सच पूछे तो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि जब हम अपने क्षणों को उपयोगी बना लेते हैं तो वही क्षण हमारे लिए सुखद भी हो जाते हैं। अगर हम अपने समय को वेस्ट करते हैं तो बाद में तो कहीं न कहीं दुख पहुंचाते ही हैं, भले उस समय वो बहुत ही सुखद महसूस क्यों न लग रहे हों, करा रहे हों। तो मित्रों, आइए अब हम न्यूज पर बात करते हैं और कुछ अलग ही अंदाज में आज हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि इन 2 दिनों के बाद आपके दिमाग में एक नई किस्म की ताजगी होगी। 2 दिनों में आपने बहुत ज्यादा उसमें चीजें नहीं भरी होंगी तो उसमें थोड़ा सा स्पेस भी अपेक्षाकृत अधिक होगा। दोस्तों, जहां तक न्यूज का सवाल है, सच पूछे तो कल ऐसी कोई भी न्यूज नहीं घटित हुई है जिसकी हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर सके। 26 नवंबर आपको मालूम है कि हमारा संविधान दिवस होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ था, उसी की स्मृति में संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आपको ध्यान होगा। तो ये नवंबर 1949 और जनवरी 1950, इसके अंतर को समझिएगा, है ना। संविधान बनकर तैयार हो गया, उस पर हस्ताक्षर हो गए, ये नवंबर 1949 था, लेकिन थोड़ा सा वेट किया गया लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950, राइट। तो जब वो बनकर तैयार हुआ, फाइनल हो गया, उस दिवस को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज है कह लीजिए, और एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे स्टूडेंट होने के नाते हमें इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। दूसरी जो खबर है मित्रों, जो छोटी सी ही खबर है, वो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, मतलब कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और हो सकता है कि इस निर्णय को दूसरे स्टेट भी फॉलो करें। निर्णय ये लिया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई बलात्कार करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा होगी, और यदि कोई गैंगरेप करता है तो उसे भी फांसी की सजा होगी, फिर उम्र कुछ भी क्यों न हो। ये एक निर्णय लिया गया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया है। आपने महसूस किया होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, जब बातचीत होती है या जब आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो इस तरह का अनुभव भी होता है कि यार अगर इसके लिए बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया जाए तो शायद इस प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लग सके। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फिर शायद खत्म ही हो जाए। कुछ देशों में बहुत कड़े प्रावधान हैं भी, क्योंकि फिर सजा की जो भयानकता है, भयावहता है, वो फिर आपको इस तरह के अपराध करने से रोकती है, कहीं ना कहीं वो प्रतिबंधित तो उन्हें करती भी है। इसीलिए बीच बीच में आप देखेंगे जब आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं तो ये मांग की जाती है कि नहीं, जो इस तरह के दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, आजन्म कारावास दे दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे बहुत से रीजन्स होते हैं, यहां हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय कम से कम लिया है, अब देखते हैं कि आगे अब क्या जाकर ये बात कहां तक बढ़ पाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए सबके अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यह एक स्वागत योग्य निर्णय है, अच्छा निर्णय है। हालांकि यह भी कहना कि केवल इसी के आधार पर हम ये मान लें कि अब इस तरह के कृत्य नहीं होंगे, दुष्कृत्य नहीं होंगे, तो वह भी कुछ ज्यादा ही अपेक्षा हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत से कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कारण होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भी कारण होते हैं, यहां तक कि आर्थिक कारण भी होते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, जिन चीजों को भी दुरुस्त किया जा सकता है कम से कम वह तो किया ही जाना चाहिए। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में और जो न्यूज का भी हिस्सा है, मैं उस पर आता हूं और उस पर हम लोग आज बात करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर हम इस पर बात करेंगे। और मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से बात करने जा रहा हूं। ये अलग तरीके से बात करने का क्या मतलब है? अलग तरीके से बात करने का जो मेरा मतलब है वह सन 2017 के मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे वायदा किया था कि बीच बीच में हम लोग सिविल सर्विस के जो मेंस हुए हैं 2017 के अभी अक्टूबर में, उनकी समीक्षा भी करते रहेंगे। और उसके तहत मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस बार के जो पेपर्स हैं अपेक्षाकृत सरल हैं। सरल इस मायने में है कि जो टॉपिक है वो वेल नोन टॉपिक है, मतलब बहुत ही अनजाने से टॉपिक पर प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो प्रश्न भी पूछे गए हैं वो काफी कुछ सीधे साधे से है, मतलब बहुत जटिल नहीं है, बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं है, बहुत ज्यादा अस्पष्ट नहीं है, साफ साफ पूछे गए हैं। तो क्या वाकई में परीक्षा आसान हो गई है? हमें यह बात बिल्कुल मानकर नहीं चलनी चाहिए, परीक्षा आसान नहीं हुई है। जहां भी प्रतियोगिता है वहां कठिनाइयां उसी तरह से मौजूद रहेंगी, लेकिन यह जरूर है कि आपकी जो तैयारी करने का जो ढंग है वह जरूर पहले की तुलना में आसान हो गया है। जब जटिलताएं बहुत ज्यादा होती हैं तो बट नेचुरल है कि आपको भी अपने को उन जटिलताओं के अनुकूल तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। और यदि रास्ता सपाट होता है तो आपकी भी यात्रा फिर सपाट हो जाती है। लेकिन यह कभी मत समझिएगा कि सपाट शब्द का अर्थ, मेरा कहने का अर्थ यह है कि यह बहुत सीधी सरल परीक्षा हो गई है, नॉट एट ऑल। क्योंकि सरल लाइन की, मतलब सीधी लकीर खींचना सबसे कठिन काम होता है। उन सरलता के बीच में भी, याद रखिए कि उन आसानी के बीच में भी ढेर सारे पेच मौजूद रहते हैं, बहुत ज्यादा घुमाव होते हैं, और सच पूछे तो उन्हें हैंडल करना उतना आसान नहीं रह जाता। इसलिए आसान नहीं रह जाता क्योंकि आपको दूसरों से ज्यादा स्कोर करना है। हाँ, अगर सिर्फ पास होना हो तब आसान हो गया है, लेकिन अगर वह तुलनात्मक है और दूसरों से ज्यादा नंबर लाने की चुनौती है, जो कि इसमें है, तब फिर आसान और कठिन जैसी बात हमें भूल जानी चाहिए। दोस्तों, इस बात की शुरुआत मैंने यह सोच कर की है कि जब हम जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को उठा करके देखते हैं, जिसमें पॉलिटिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की बात है, तो मैं पाता हूं कि जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं है, बहुत ही सीधे साधे हैं, और सच पूछे तो एक तरह से प्यारे प्रश्न हैं। और जो बहुत सीधे साधे और प्यारे प्रश्न होते हैं उनके साथ फिर दिक्कत क्या होती है मालूम है आपको? दिक्कत ये होती है कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी आप केवल किताबों के आधार पर नहीं कर सकते, और सच पूछे तो आर्टिकल्स के आधार पर भी उतनी नहीं होती है जितने कि विचारों के आधार पर होती है। फिर हमें उसके लिए अपनी तरफ से विचार करना होता है, क्योंकि जैसे ही हम किताबों की दुनिया से निकलते हैं या किताबों की दुनिया से निकल करके जब प्रश्न बनाने लगते हैं, फ्रेम करने लगते हैं, तो ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, कई कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, किताबों के आधार पर जब हम प्रश्न बनाएंगे परीक्षा के लिए, तो सीधी सी बात है कि किताब हमसे कहती है कि देखो मेरे अंदर ये लिखा गया है, या मेरे अंदर इन इन प्रश्नों के जवाब मौजूद हैं, तो आप उसके आधार पर प्रश्न बना लीजिए ताकि मैं उनके आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। लेकिन जब वही विषय किताबों की दुनिया से बाहर निकल जाता है तो फिर तो वो इंटेलेक्चुअलिटी का हिस्सा बन जाता है, वो एक स्वतंत्र वाद विवाद का हिस्सा बन जाता है, स्वतंत्र विचार का हिस्सा बन जाता है। फिर तो सीधी सी बात है कि भाई एक टॉपिक है, बस अब इस टॉपिक के आधार पर आप पूछिए कि क्या प्रश्न पूछते हैं, कितने सारे प्रश्न पूछते हैं, ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर के आप घबराइए मत, एक बहुत अच्छी बात है कि अगर टॉपिक किताब से निकल करके स्वतंत्र हो गए हैं तो याद रखिए कि उनकी अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। यूपीएससी ने वह सीमा अप्रत्यक्ष रूप से करेंट अफेयर्स के साथ उसे जोड़कर फिक्स कर दी है कि जो टॉपिक अब किताबों से निकलकर बाहर आ गए हैं उन्हें आप करंट अफेयर से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप उसे करंट अफेयर से जोड़ेंगे आपको तुरंत कुछ प्रश्न क्लिक कर जाएंगे कि नहीं इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न बनेंगे और क्या बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की अपनी सीमा तो है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि सीमातीत है, सीमा से परे है, नॉट एट ऑल, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए बड़े आराम से आप उस टॉपिक पर कुछ प्रश्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और उस पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों अपने इस कथन की पृष्ठभूमि में मैं अब आज एक बात की चर्चा करना चाहूंगा, खासकर जो कल के न्यूज में जो मेंशन किया हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इन तीनों को एक दूसरे को सशक्त बनाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही, आपने न्यूज सुनी है, ध्यान दीजिए, इन्हें एक दूसरे को सशक्त बनाना चाहिए, राइट। इसके आप विरोध में चले जाइए, क्या प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि सशक्त बनाना चाहिए ताकि हम एक मजबूत भारत जिसकी कल्पना की है हमने उसे पूरा कर सके, उस सपने को पूरा कर सके, तो क्या अभी सशक्त नहीं बना रहे हैं? देखिए अब इससे भाव क्या निकलता है, है ना। तर्क शास्त्र के लिए तो आप मटेरियल यहीं से चुनेंगे ना, यहीं से आप लेकर के आएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है देश को, मतलब प्रधानमंत्री जी को लग रहा है, इसका मतलब मान के चलिए कि देश को लग रहा है कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं वो एक दूसरे को सशक्त नहीं बना रही है, पहला पॉइंट। तो चलिए तीनों अपना अपना काम करते रहे। न्यूज में भी आपने सुना सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, यानी कि ये जो तीनों व्यवस्थाएं, तीन जो हमारे स्तंभ हैं, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी, ये तीनों अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, राइट। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर इनका हो गया। क्या यह सेपरेशन ऑफ पावर सही मायने में एक दूसरे को मजबूत बना रहा है या एक दूसरे को कमजोर बना रहा है, यानी कि जो पावर का इस्तेमाल हो रहा है वो पावर का इस्तेमाल एक दूसरे की मजबूती के लिए हो रहा है या कमजोर करने के लिए हो रहा है? अब आपको इस रूप में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मित्रों आज मैं आपको केवल सोचने के लिए कुछ बिंदु ही दे पाऊंगा, मेरे पास इस पर बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन समय मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपको भी बेहतर होगा कि इस पर सोचना चाहिए, आप इस पर सोचें, राइट। तो सेपरेशन ऑफ जो पावर है, अगर इसको एक तरीके सेपरेशन ऑफ वर्क मानकर हम चलें तब तो संकट पैदा होता है कि तीनों के अलग अलग काम हैं क्योंकि तीनों की अलग अलग शक्तियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही बात कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ वर्क नहीं है, जो उन्होंने नहीं कहा है, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। क्या यह ध्वनित हो रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं? सेपरेशन ऑफ वर्क नहीं है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है इन तीनों का, वो एक ही है, एक मजबूत भारत का निर्माण करना, राइट। और वह सेपरेशन ऑफ पावर केवल एक व्यवस्था है, दैट्स ऑल। क्योंकि आगे फिर देखिए जो न्यूज में आपने सुना है, दोस्तों मैं इसके माध्यम से थोड़ा सा आपकी क्षमता को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको कहीं जगलरी लग रहा हो या वाक्यों या जो तथ्य हैं उनमें दोहराव लग रहा हो, लेकिन ऐसा जानबूझ कर मैं कर रहा हूं ताकि आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो सके कि चीजों के बारे में कैसे विचार किया जाता है। अदरवाइज तो चीजें बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहती हैं और हमारा दिमाग कोई भी तथ्य सोचने में असमर्थ अपने को महसूस करता है, राइट। अब आप देखें कि उन्होंने एक बात और कही जो डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो संविधान है, अब मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, जो संविधान है वो अपने आप में कुछ नहीं है, उसके पास सारी रिमेडीज हैं। अगर हमारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो संविधान का फेलियर नहीं है। सही मायने में वो जो फेलियर है वह फेलियर है कि उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। और संविधान को अब देखिए कि लागू नहीं किया गया, अब इसमें कौन आ जाते हैं? एक कार्य हो गया, संविधान तो बन गया, संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? इन तीनों पर है, विधायिका पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर। देखिए वैसे हम न्यायपालिका के बारे में ये कह सकते हैं कि उसकी उसका जो रोल है वो तो कानून की व्याख्या करना है, उसे लागू करना नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से व्याख्या करेगी उसी तरह से संविधान लागू हो जाएगा। और अगर हम इस लागू किए जाने को शब्द को पकड़ लेते हैं मित्रों, तो उसका मतलब क्या होता है? लागू आप कैसे करेंगे संविधान को? ये तीनों जिस तरीके से काम करेंगे, जिसको मैंने कहा सेपरेशन ऑफ वर्क, यानी कि याद रखिए जो कहना चाह रहे हैं वो कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन सेपरेशन ऑफ वर्क नहीं है। और अगर हम इस सेपरेशन ऑफ वर्क को हटा करके यूनिटी ऑफ वर्क ले आए उसकी जगह पर, तो स्वाभाविक तौर पर जो संस्थाएं हैं हमारे देश की, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें मजबूती आ जाएगी, उनका सशक्तिकरण हो जाएगा। मित्रों हो सका तो इस विषय पर मैं कल भी आप लोगों से बात करूंगा। अभी जो एक दो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर के कि किस तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इनफैक्ट सेपरेशन ऑफ वर्क जैसा दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि आज वक्त हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं अगले चरण पर आता हूं जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का स्टेज है। और एक अच्छी बात यह है कि आज क्लिपिंग्स की संख्या नहीं के बराबर है, आप चाहें तो आप इस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, फिर भी मैं दो तीन क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी जरूरत के अनुसार देख लेंगे। दोस्तों जहां तक ईमेल का सवाल है, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसमें दोस्त कुछ मेल हैं, एक मेल है मेरे पास श्वेता राज का जो चंपारण बिहार से हैं। श्वेता तुम्हारे मेल को पढ़ने के बाद मुझे तुम्हारी जो भाषा है वो बहुत सशक्त है, बहुत अच्छी भाषा है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो तुम बीए सेकेंड ईयर में ही हो, तुम्हारे पास वक्त भी बहुत है, भाषा भी अच्छी है और वक्त भी बहुत है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं सफलता प्राप्त करने की। अपनी इस शक्ति को समझो और इसे अपनी और ज्यादा शक्ति में तब्दील करने की कोशिश करो। प्रीति बंसोड़ दुर्ग से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। प्रीति तुमको बहुत बहुत बधाई, और हम सब की ओर से, मैडम की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वनाथ प्रताप आपके मेल को पढ़ने के बाद मुझे यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि आपके अंदर चीजों की को गहराई से समझने की एक दृष्टि है, आप चीजों को तर्क के आधार पर भी समझ लेते हैं और भावनाओं के आधार पर भी समझ लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा और बहुत यूनिक किस्म का गुण होता है। आप अपनी इस क्षमता को पहचानिए, बढ़ाइए, यह भी आपकी सफलता के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और इन तीन मित्रों के अतिरिक्त अब शेष जो मैंने कुछ नाम लिखे हुए मित्रों, वे हैं चंचल उप्रेती, समाधान अधौता पुसाद महाराज महाराष्ट्र से, पुसाद महाराष्ट्र से नहीं, समाधान अधव पुसाद महाराष्ट्र से, शैली अग्रवाल गुना मध्य प्रदेश से, सुमित सिंह उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, धनराज यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, रिभा रजक, बबीता सोनी गुना मध्य प्रदेश से, अनूप कुमार लाहौरिया, गौतम पासवान, अमित राम और अमित मांडेकर तथा राज नीलम, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।